Many people face significant problems.
इस पार्थिव जीवन में बहुत से लोगों को अर्थपूर्ण परेशानियां का यहाँ तक दुखद घटना का सामना करना पड़ता है। संसार में सब जगह हम परेशानियों और विपत्तियों के उदाहरण देखते हैं। टेलीविजन पर मौत की तस्वीर अधिक कष्ट और निराशा हम में से होकर हमारी आत्मा से गुजरते हैं। हम देखते हैं कि जापानी सुनामी और भूकंप से हुई तबाही से निपटने का संघर्ष कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत की विनाशक तस्वीरें जिसे हमने अभी दोबारा देखा था, फिर से उसे जीना दर्दनाक था। ऐसी कुछ दुखद घटनाओं के बारे में जानना कभी कभी भावुकता से गुजरना होता है, विशेषकर जब वह मासूम लोगों द्वारा भुगती गई हो। कभी कभी दुखद घटनाएं बहुत व्यक्तिगत होती है। एक बेटा बेटी का युवावस्था में मृत्यु हो जाना या विनाशकारी बीमारी से पीड़ित ग्रस्त होना, एक प्रिय अभिभावक का जीवन बिना किसी विचार के लेना या दुर्घटना का होना। जब कभी दुखद घटना घटती होती है, हम शोक और दूसरे के बोझ के हल्का करने में लग जाते हैं। हम उन बातों के लिए शोकित होते हैं जो कि पूरी तरह पूरी नहीं हुई हो और गीत जिसे गाया न जा सका हो। गिरजाघर के मार्गदर्शकों से लगभग हर बार प्रश्न पूछा जाता रहे, क्यों कर परमेश्वर बुरी चीजों की होने देता है, विशेषकर अच्छे लोगों के साथ? क्यों कर वो जो नेक और प्रभु की सेवा करने वाले ऐसी दुखद घटना उसे बचाए ना गए? यद्यपि हम इस सभी को जवाब नहीं जानते हैं, हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों को तो जानता है जो हम विश्वास और भरोसे के साथ दुखद घटनाओं के सामना करने देते हैं, कि हम सबों के लिए आशा से भरा उज्जवल भविष्य है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला, हमारा पास स्वर्ग का पिता है जो हमें व्यक्तिगत रूप से जानता और प्रेम करता है और हमारी तकलीफों के परिपूर्ण से समझता है। दूसरा, उसका पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, जिसका प्रायश्चित न सिर्फ हमें उद्धार और उत्कर्षता प्रदान करता है परंतु जीवन के सारे अविश्वसनीयता हुई हानि की पूर्ति करेगा। तीसरा, पिता की आनंद की योजना उसके बच्चे के लिए सिर्फ न सिर्फ पहले का और पार्थिव जीवन भी शामिल है परंतु अनंत जीवन भी है। उनके साथ महान और महिमा पूर्ण पुनर्मिलाप भी जो हमें छोड़कर चले गए है शामिल है। सभी गलतियों के सुधार सकेंगे और हम परिपूर्णता के साथ स्पष्टता से और दुष्मुक्त दृष्टिकोण और समझदारी के साथ देख सकेंगे। सीमित दृष्टिकोण में से उनके लिए जिनके पास ज्ञान समझदारी या पिता की योजना में विश्वास नहीं है, जो सिर्फ संसार के नाशवरता के लेंस के द्वारा उसके युद्धों हिंसा बीमार और बुराई के साथ देखते हैं, यह जीवन निराशक अस्त व्यस्त अविश्वसनीय और अर्थहीन हो सकता है। गिरजाघर के मार्गदर्शक इस दृष्टिकोण की तुलना उनके साथ करते हैं जो तीन त्रिशों के नाटक के मध्य चलते हैं। वह जो पिता की योजना के ज्ञान के बिना समझ के बिना पहले दृश्य या पूर्व जीवन की उपस्थिति और वहां पर स्थापित हो दृश्य में क्या हो रहा हो ना, वो तीसरे दृश्य में स्पष्टता और विश्लेषण को हुई समझते है जाकि हो जो कि तीसरे दृश्य में आने वाला है जो पिता की योजना का महिमा से परिपूर्ण है। बहुत से प्रोत्साहित नहीं होता है कि उसके प्रिय और समझदारी योजना के तहत उनके जो बिना किसी कारण के असुविधा में अपने आप से विरुद्ध के अंत में प्रकट होता है। लगभग छह महीने में यात्री जहाज टाइटैनिक की समुद्र में डूबने की दुखद घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस भयानक विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों से घिरी घटना जब इससे यह हुई है, पूरी शताब्दी लोगों पर गहरा असर छोड़ा गए। नए शान शौकत से भरा जहाज के संस्थापक चीनों ने 11 मंजिल ऊंचा और लगभग 250 मीटर बड़ा ने टाइटैनिक को के सुरक्षा के अधिकतम और अनुचित प्रबंध का बनाया था ने आइसबर्ग के ठंडे पानी से भरा गया था। यह जहाज तकरीबन डूबने वाला नहीं था जब वह बर्फीले अटलांटिक महासागर के सतह में डूबा 1500 आदमी से आत्मा से अधिक ने नाशवर जीवन छोड़ दिया था। कई तरीकों से टाइटैनिक का डूबना जिंदगी के लिए एक लक्ष्य और सुसंसार के बहुत से सिद्धांत है। वो यह कठिनाई के सिर्फ संपूर्ण उदाहरण है इस नाशवर जीवन के लेंस के द्वारा देखने का है। जीवन को खोने की दिव्य आपदा उसका परिणाम है परंतु प्रकृति के दिख दुर्घटना दो विश्वयुद्ध में सामूहिक अत्याय और अभी गुजरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों के विनाश की 10वीं वर्षगांठ हमने अपने समय से में सदमे पीड़ा और बुराई की अभ्यास का चुनाव करते हैं नैतिक संबंधी घटनाओं से घिरी होने के परिणाम के एक झलक दिखा है। यह परिवार मित्रों और राष्ट्र को दुखद विपत्तियों के नतीजों का बेवजह के कारणों का भयानक परिणाम है। टाइटैनिक के विषय में खतरनाक पानी की यात्रा करने और घमंडने के खतरे से सबक सिखा था और कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। जो उसमें शामिल थे सब जीवनों से चले गए। कुछ अमीर और प्रसिद्ध थे और जैसे जान जेकब एस्टर, परंतु उनमें मजदूर, दूसरे देश में जाकर बसने वाला, औरतें, बच्चे, नाविक दल के सदस्य भी था। उस वक्त में लगभग दो अंतिम दिनों का संत का संबंध टाइटैनिक से था। दोनों में आपने परेशानियों, कठिनाइयों, चुनौतियों में समझदारी दिखाई और दुखद घटनाओं में भीतरी ताकत की थी कि हम कैसे उनसे निपट सकते हैं। पहला एक उदाहरण आशीषों के लिए प्रोत्साहित होना जो हम प्राप्त करते हैं और चुनौतियां के हम नकारते हैं। इसमें शामिल है अल्मा सोनी, जिसने बाद में जनरल अधिकारी के रूप में सेवा की थी। वो मेरा पहला स्टेक अध्यक्ष थे जब मैं लोगन यूटा में पैदा हुआ था। एल्डर सोनी के साथ मेरा मिशन का साक्षात्कार हुआ। उन दोनों में भावी सभी प्रचारों की का साक्षात्कार जनरल अधिकारी द्वारा होता है। उनका गहरा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा था। जब अल्मा एक युवा थे, उनका पास गिरिजा में कम सक्रिय एक मित्र नाम फेरेट था। उनका मिशन सेवा के विषय पर कई चर्चा हुई थी और तकरीबन अल्मा सोनी ने फेरेट को तैयारी और सेवा के लिए विश्वास दिलाया था। उन दोनों को ब्रिटिश मिशन पर बुलाया गया था। उन्हें मिशन की संपत्ति पर एल्डर सोनी मिशन सेक्रेटरी ने यूनाइटेड स्टेट लौटने के लिए उनकी यात्रा का प्रबंध किया था। उसने टाइटैनिक पर अपने लिए, फेरेट और अन्य चार प्रचारक के लिए जिन्होंने अपना मिशन समाप्त किया का टिकट लिया था। जब जाने का समय आया था, किसी कारण बस फेरेट को देरी हो गई। एल्डर सोनी ने उस आलिशान जहाज के प्रथम श्रेणी की सभी 6 टिकट को लौटा दिया था और यात्री जहाज की जो कि अगले दिन जाने वाला था की टिकट ले ली थी। वो चारों प्रचारक जो टाइटैनिक पर जाने से बहुत प्रसन्न थे निराश हो गया। एल्डर सोनी का जवाब जोसेफ और उसके मिश्र में उसके भाइयों के जो उत्पत्ति का लेखा का सामान्य था, उसका कैसे हम अपने परिवार में लौट कर जाएगा जब वह हमारे साथ न होगा। उसने अपने साथियों को समझाया था कि वह सब साथ इंग्लैंड आए थे और वह सब साथ ही घर लौटेंगे। एल्डर सोनी ने बाद में टाइटैनिक के डूबने का अंजाम जाना और आभार पूर्वक अपने पितर फ्रेड से कहा था, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। फ्रेड ने जवाब दिया, नहीं, इस मिशन पर लाने से तुमने मेरा जीवन बचाया। उनको बचाने के लिए सभी प्रचारकों ने प्रभु का धन्यवाद किया था। कभी कभी एल्डर सोनी का स्थिति और उनके प्रचार साथियों के साथ के रूप में उन पर महान आशीष आती है जो विश्वासी होती है। हमें अपने जीवन में आई सभी दया के लिए आभारी होना चाहिए। हम बहुत सी आशीषों से अज्ञात होते हैं जो कि दिन प्रतिदिन हमें प्राप्ति होती है। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे दिलों में आभार की आत्मा हो। धर्मशास्त्र साफ करते हैं जो कि नेक है उधारकर्ता का अनुसरण करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन कर भूमि में उन्नति करेंगे। उन्नति के लिए जरूरी तत्व है हमारे जीवन में आत्मा का होना। इसीलिए नेकता, प्रार्थना और विश्वासी होना नाश्वर जीवन का अंत समय हमेशा परिणाम खुशी नहीं होगा, बहुत की अधिक परीक्षाओं का जीवन करना अनुभव करना होगा। यह जब होगा विश्वास हमारे पास होगा और परमेश्वर की अनुमति द्वारा प्रभु के आशीष का खोजेगा। प्रभु ने घोषणा की थी कि एल्डरों की बुलाहट होना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके सिर पर उसका नाम में हाथ रखकर, और यदि वह मर गए वह उसके लिए मरेंगे और यदि वह जीते है उसके लिए जाएंगे। यह उपदेशात्मक है कि दूसरा अंतिम दिनों का संत के टाइटैनिक के साथ संबंध खुशनुमा अंत नहीं हुए है। आइरिन कार्वेट 30 साल की थी। प्रोबो यूटा से वो एक पत्नी और माँ थी। उसके पास विशेष हुनर जैसे एक कलाकार और संगीत कला की थी कला थी। वह एक अध्यापक और एक नर्सी भी थी। प्रोबो में चिकित्सा व्यवसाय के निवेदन पर उसने लंदन में 6 महीना की प्रसूत विधा का अध्ययन किया था। यहाँ इसकी अपार कामना थी कि उस संसार में भिन्नता लाए। वो देखभाल, विचार और प्रार्थना करने वाली और पराक्रमी थी। उसके टाइटैनिक से अमेरिका लौटना चुनाने का एक कारण यह था कि उसने सोचा कि प्रचारक उसके साथ यात्रा करेंगे और यह कि उसके सुरक्षा प्रदान करेंगे। आइरिन उन कुछ औरतों में से एक थी जो उस दुखद घटना से बची नहीं थी। ज्यादातर औरतों और बच्चों के जीवन सुरक्षा नावों में डालकर आखिरकार बचा लिया गया था। वह पर प्रत्येक के लिए सुरक्षा नाव पर्याप्त नहीं थी, बल्कि यह माना जाता है कि सुरक्षा नाव पर चली नहीं थी क्योंकि उसने उसके विशेष अभ्यास के साथ वह जरूरतमंद यात्रियों के ध्यान रखे हुए थी जो आइसबर्ग के टक्कर खा से जख्मी हो गए थे। यहाँ पर कई तरह की चुनौतियां हैं। कुछ हम जरूरी अनुभव देता है इस नाश्वर जीवन में हानिकारक परिणाम विश्वास की कमी के या हमारे स्वर्ग में पिता की योजना संबंधी अभाव का सबूत नहीं है। शुद्ध करने वाली आग वास्तविक है और चरित्र के गुण और निकटता जो कि कठिन कष्टों के अनुभवों से पूर्ण और शुद्ध हमें बनाता है और हमें परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करता है। जब जोसेफ स्मिथ लिबर्टी जेल में एक कैदी थे, प्रभु ने उन्हें घोषणा की थी कि बहुतायत से मानव जाति पर तबाही हो सकती है। उद्धारकर्ता ने उस भाग में कहा था कि यदि जोसेफ का गहराई में डाल दे, यदि विशाल लहरे गति से उसके विरुद्ध आए, यदि तीव्र वायु उसके शत्रु बन जाए और सारे तत्व मिलकर रास्ते के घेरे, ये सब बातें उसे अनुभव देगी और उसके लिए अच्छा होगा। उद्धारकर्ता ने अपने निर्देश का सारांश कहने का द्वारा दिया था कि जोसेफ के दो दिनों का जाना जाएगा और उसके वर्षों की गिनती कम नहीं होगी, इसीलिए उसने डरना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहेगा। कुछ चुनौतियां दूसरों के चुनाव का नतीजा होती है। व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति और प्रगति के लिए चुनाव करना जरूरी है। बुरा व्यवहार का चुनाव एक तत्व है। कप्तान मरोनी ने समझाया था इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक का मरना इसीलिए सहन करता है जिससे कि उस न्यायदंड मापियों के ऊपर गिरे। उसने इस परमेश्वर धार्मिक का मरना इसीलिए सहना करता है उस साफ किया था। इसीलिए तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धार्मिक मारे जाने का कारण मिट गया है, लेकिन सुनो, वो ये आपने प्रभु के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। हो नहीं सकता है कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उसे मनुष्य पर जिसके कारण वो जाती है। कुछ चुनौतियां परमेश्वर के नियमों को आज्ञाकारिता करने से आती है। स्वास्थ्य परेशानियां, धूम्रपान, शराब और दवाई कोई अनुचित तरह से लेने के कसरत में का परिणाम होती है। जेल में कैद होना और जिस शराब का परिणाम और दवाइयां संबंधित गुनाह भी काफी अधिक है। मेरा प्रिय मिशन अध्यक्ष एल्डर मेरियन जी हंग्स, जो अगस्त में गुजर गए, ने हमें से पूछा था कि प्रचारों के नाश्वर चुनौतियों को झलने के लिए एक बयान को याद करना है। यहाँ पर कोई न मौका, न वाक्य, न मंजिल है जो कि कठिन दशा से बाहर निकलने या विघ्न डालने या मजबूती से रोकने का समाधान करने का व्यक्ति निर्णय कर सकता है। वह ये जानते हैं कि ये सभी चुनौतियों पर लागू नहीं होता है। हम वीरते हैं, परंतु यह आत्मिक विषय में सत्य है। मैं उनकी सलाह का अपने जीवन में समर्थन करता हूँ। टाइटैनिक पर भयंकर तरह से जीवन को खोने का यह भी कारण था कि वह पर सुरक्षा नाव प्राप्त नहीं था। परेशानियों में संबोधित करना जो हम इस जीवन में झेलते हैं, उद्धारकर्ता की प्रायश्चित प्रत्येक के लिए सुरक्षा नाव प्रदान करते हैं। जो कही यह सोचते हैं कि परेशानी का सामना करना ठीक नहीं है, प्रायश्चित सभी ठीक न होने वाला को भुगतान करता है। एक अनोखी चुनौती उनके लिए जिन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया है, इनकार करते हैं इस जीवन के खोए हुए मौके के बारे में अधिक सोचकर। अक्सर जो जल्दी मर जाते हैं महत्वपूर्ण योग्यता, रुचि और हुनर का प्रदर्शन करते हैं। हमारी सीमित समझदारी के साथ हम चीजों के जो पूरी नहीं हुई और गीत जिसे गा न सके के लिए शोक करते हैं, ये वर्ण करता है जैसे आपका संगीत आपके साथ अंदर ही मर रहा है। संगीत इस संबंध में किसी भी प्रकार के वाक्य का पूरा न होने का लक्षण है। कभी कभी हम लोग महत्वपूर्ण तैयारी करते हैं पर नश्वर के में दिखाने का मौका नहीं मिलते हैं। जानी मानी एक कहावत है, इसे कुछ असफल मौके पर लिखित है, कई फूल बिना देखे खिले ही मुरझा जाते हैं और उसकी सुंदरता रेगिस्तान की हवा में व्यर्थ हो जाती है। खोया हुआ मौका सात पर व्यवसाय, हुनर, अनुभव या अन्य से संबंध रखते हैं। ये सभी बहन कॉर्बेट की मामल में छोटे पड़े जाते हैं। वहाँ पर कि जिसे वह गा न सकी और भाग्य जिसे वो इस नाश्वर जीवन में पूरा न कर पाई, परंतु सुसमाचार के लेंस के द्वारा चौड़े में स्पष्ट से दिखा पाई थी इस सीमित लेंस के साथ पर नाश्वर जीव अस्तित्व निरा मात्र है। हम जानते हैं प्रिय स्वर्ग में पिता ने अपनी योजना में अनंत में महान पुरस्कार का वादा किया है, जैसा कि पौलुस ने सिखाया, जो बातें आंखें नहीं देखी और कान नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य ने चित्त में नहीं चढ़ी, वो वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले हैं। उद्धारकर्ता ने कहा, यद्यपि तुम्हारे मन में आराम हो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। हमारे उसका वादा है कि हम अपने बच्चों का साथ सदा का आनंद का गीत गाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमेन।